हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। कृषा युग के साथ होटल सनशाइन में लंच के लिए आई हुई थी। युग वहाँ किसी और मकसद से आया था। युग अच्छे से जानता था कि रोहान खुराना वहीं पर रुका हुआ है और वो उसके लिए ही होटल सनशाइन आया हुआ था। जब युग ने रोहान को लिफ्ट से नीचे उतरते देखा तो उसने कृषा को अपने साथ लिया और गाड़ी में आ गया। अगले ही पल युग ने बेरहमी से रोहान को टक्कर मारी और अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल गया। अपने सामने हुए रोहान के एक्सीडेंट को देखकर कृषा हैरान थी। उसने युग की क्रुएलिटी इससे पहले भी देखी थी, लेकिन एक अनजान इंसान को इस तरह कुचलना और फिर वहां से बिना उसकी हेल्प किए निकल जाना, उसने युग से एक्सपेक्ट नहीं किया था। युग ने तुरंत अपनी गाड़ी वहां से हटा दी और वो तेज स्पीड में गाड़ी चलाते हुए वापस राणा मेंशन को लौट रहा था। उसके एक्सीडेंट वाले मामले को कैसे हैंडल करना था वो उसके आदमी अच्छे से जानते थे, इसलिए युग को पुलिस या बाकी चीज़ों की कोई फिक्र नहीं थी। होटल से काफी आगे आने के बाद कृषा जोर से चिल्लाते हुए बोली, स्टॉप द कार युग, आई सेड स्टॉप इट। युग ने जो भी किया था उस वजह से कृषा काफी गुस्से में थी। कृषा के कहते ही युग ने अपनी गाड़ी रोक ली और उसकी तरफ सर्द निगाहों से देखने लगा। युग ने उसी लहजे के साथ कहा, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? रियली, तुम मुझसे मेरी प्रॉब्लम पूछ रहे हो? कृषा ने गुस्से में जवाब दिया, अभी अभी तुमने किया वो क्या था? एक मासूम इंसान को तुमने रोड पर कुचल दिया। आखिर क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? क्या इसीलिए तुम वहाँ होटल में मुझे लेकर गए थे? यू नो व्हाट, तुम्हें मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करना होता है, तुम्हें बस अपना काम करना होता है। तुम्हारा काम निकालने के लिए तुम मेरा यूज करते हो और कुछ नहीं है। बोलते हुए कृषा जोर जोर से रोने लगी। युग ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो एकटक उसकी तरफ देख रहा था। युग की चुप्पी कृषा को और गुस्सा दिला रही थी। कृषा ने युग की तरफ देखा जो बिना किसी भाव के उसी को घूर कर देख रहा था। कृषा ने आगे कहा, मुझे इसी वक्त घर जाना है। फॉर गॉड सेक युग, अब मुझसे दूर रहना। मुझे अच्छे से समझ आ गया है कि तुम क्या हो और मेरे साथ क्यों हो। मेरे साथ कोई भी इमोशन जोड़ने की कोशिश मत करना युग राणा, क्योंकि वहाँ भी तुम्हारी सेल्फिशनेस होगी। कृषा ने वहां से जाने के लिए कहा तो युग ने गाड़ी स्टार्ट की और राणा मेंशन की तरफ जाने लगा। युग ने जो भी किया था उससे कृषा बहुत हर्ट हुई थी, इसलिए युग कोई भी सफाई देकर उसे और हर्ट नहीं करना चाहता था। कुछ ही देर में वो लोग राणा मेंशन पहुंच चुके थे। जैसे ही युग ने गाड़ी पार्किंग एरिया में पार्क की, कृषा जल्दी से गाड़ी से उतरी और दौड़कर लिफ्ट की तरफ जाने लगी। वहीं युग धीमे कदमों से चलते हुए उसके पीछे आ रहा था। इसमें इतना इमोशनल होने की क्या जरूरत थी, वो भी उसे इंसान के लिए जिसे ये ठीक से जानती तक नहीं। क्या है ये लड़की, ना इसे अपने से जुड़ी बातों के बारे में ठीक से पता है और ना ही खुद से जुड़े लोगों को अच्छे से जानती है। कुछ ज्यादा ही कावड़ बना दिया है आदित्य सिंघानिया ने इसे। फ्यूचर में मेरे बच्चे हुए तो मैं कभी उन्हें इसके जैसा तो बिल्कुल नहीं बनाने वाला, युग ने सिर हिलाकर कहा। बातों बातों में उसने अपने बच्चों के बारे में भी सोच लिया था। कृषा होते हुए अंदर जा रही थी। अनफॉर्चुनेटली उसे पिछली बार की तरह मिसेज मानिया राणा मिल गईं। कृषा को वहां देखकर वो उसके सामने आ गईं। कृषा को रोते हुए देखकर मानिया राणा ने ईविल स्माइल देते हुए कहा, अरे रे, अभी तो शादी को एक हफ्ता हुआ है और उसने तुम्हारी ये हालत कर दी है। सोचो पूरी जिंदगी वो तुम्हें कितना टॉर्चर करेगा। तुम्हारी पूरी लाइफ इसी तरह रोते हुए गुजरने वाली है। पिछली बार कृषा ने मानिया के साथ जो भी किया था उसके बाद से वो मौका ढूंढ रही थी कि कैसे कृषा को परेशान करके उसे लड़ाई करने के लिए उकसा सके। आज भी वो वही कर रही थी। अपनी बातों से कृषा को इंस्टिगेट करके मानिया उसे लड़ने पर मजबूर कर रही थी। कृषा ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो रोते हुए लिफ्ट की तरफ जाने लगी। इस वक्त कृषा किसी से बात करने के मूड में नहीं थी। कृषा के इग्नोर करने पर मानिया को और भी ज्यादा गुस्सा आया। वो उसके पीछे बढ़ते हुए चिल्लाकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह इग्नोर करने की? तुम ना ऐसे नहीं सुधरने वाली। आज मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाकर रहूंगी। बोलते हुए मानिया कृषा का हाथ पकड़ते ही वाली थी कि तभी उसकी नज़र युग पर पड़ी जो हाथ बांधे उसे ही देख रहा था। कृषा वहां से चली गई जबकि मानिया के कदम वहीं पर जम गए थे। उसे देखकर युग ने एक तेज लुक दी और सर्द लहजे में कहा, कुछ औकात दिखाने की बात हो रही है? युग को देखकर मानिया ऐसे ही काफी घबरा गई थी। वो डरते हुए बोली, वो मैं बस कृषा से बात करने की कोशिश कर रही थी। वो रो रही थी तो मुझे लगा बच्ची को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, उसने मुझे गलत समझ लिया और चली गई। उसने जैसे तैसे अपनी बात पूरी की। आगे से उस बच्ची और उसकी प्रॉब्लम को मुझकर छोड़ दीजिए, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। युग ने सख्त लहजे में जवाब दिया और वहां से निकल गया। उसके जाते ही मान्या ने राहत की सांस ली। उसने अपने सीने पर हाथ रखा। युग को अचानक सामने देखकर मान्या की हार्टबीट तेज हो गई थी। मान्या ने धीरे से कहा, ओ गॉड, ये लड़का, ये सिर्फ दिखने में ही इनोसेंट है, बाकी इसकी आवाज से ही डर लगता है मुझे। मान्या ने इधर उधर देखा और वहां से चली गई। कुछ ही देर में ऊपर आते ही कृषा दौड़कर वॉशरूम में गई और जोर जोर से रोने लगी। कृषा ने शावर ऑन किया और उसके नीचे खड़ी हो गई ताकि उसके रोने की आवाज बाहर तक न आ सके। कृषा सुबकते हुए धीरे से बोली, युग मुझे प्यार नहीं करता, ये मैं पहले से जानती थी, फिर मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? युग माफिया है, क्रूअल है, लोगों की जान लेता है, फिर उसका ये चेहरा देखकर मुझे क्यों दर्द हो रहा है? युग अंदर आया तो उसने बाथरूम से शावर की आवाज सुनी। युग गुस्से में दरवाजे के पास आया और खोलने की कोशिश करने लगा। इस बार दरवाजा अंदर से बंद था। युग बाहर से गुस्से में जोर से चिल्लाया, अगर पानी में भीगने की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हुई तो आई स्वेर कृष, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं लगेगा। कृषा ने अंदर से कोई जवाब नहीं दिया। उसने शावर बंद किया और गीले कपड़े निकाल दिए। कृषा बाथरोब पहनकर बाहर आई और बालों में टॉवल बांध रखा था। कृषा ने बाहर आकर युग की आंखों में देखा। युग की आंखें गुस्से में लाल थीं तो कृषा के रोने की वजह से। कृषा ने युग से भरी आवाज में कहा, डोंट वरी, मेरी वजह से तुम्हारे मिशन में कोई रुकावट नहीं आएगी। कहकर कृषा रूम की साइड अलमारी की तरफ गई और वहां से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर कुछ दवाइयां लेने लगी। कृषा को वहां आए हुए एक हफ्ते से ज्यादा का टाइम हो गया था। इतने दिनों में रूम में कौन सी चीज कहाँ होती है वो उसे अच्छे से पता था। कृषा के इस तरह इग्नोर करने पर युग ने गुस्से में मुठ्ठियां बांध ली। वो इस वक्त कृषा को कुछ भी नहीं कहना चाहता था, इसलिए रूम से बाहर चला गया। वहीं कृषा को लगा कि युग उसे मनाएगा और पैम्पर करेगा, लेकिन वो फिर से उसे इग्नोर कर रहा था। युग को जाते हुए देखकर कृषा ने अपने मन में कहा, क्या मैं इतना भी डिजर्व नहीं करती कि तुम आकर मुझसे प्यार से बात करो? मेरी गलती क्या है जो तुम मेरे साथ इतना रूड हो, या बाकी लोग मुझे पसंद नहीं करते? कृषा लेस्ट करने के लिए कुछ देर लेट गई। शाम के लगभग 7 बज रहे थे। इस बीच कृषा और युग का कोई इंटरैक्शन नहीं हुआ था। युग को जैसलमेर के लिए निकलना था। युग ने स्टोर रूम से लगेज लिया और रूम में आकर कृषा से कहा, तुम्हें याद नहीं है लेकिन हमें राजस्थान के लिए निकलना था। बोलते हुए युग की नज़र कृषा पर पड़ी। उसने देखा कि वो जाने के लिए तैयार हो चुकी थी।
पानी में भीगने की वजह से कृषा हल्की जुखाम हो गई थी, इसलिए कृषा ने गर्म कपड़े पहन रखे थे। उसे देखने के बाद युग ने सिर हिलाकर कहा, हम राजस्थान जा रहे हैं, लंदन नहीं। जो तुमने इस तरह के कपड़े पहने हैं, हाँ, इस मौसम में वहाँ हल्की ठंड होती है, पर इतनी भी नहीं कि तुम इतने ज्यादा गर्म कपड़े पहनो। कृषा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और लिफ्ट की तरफ जाने लगी। युग उसके पीछे पीछे गया। वो दोनों नॉर्मल लिफ्ट में जाने के बजाय प्राइवेट लिफ्ट से नीचे गए थे, जो युग ने खास पर्पस से बनाई थी। वो दोनों वहाँ से इसलिए गए थे ताकि बाकी घर वालों का सामना नहीं करना पड़े। युग अब एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना चाहता था। तय समय पर वो दोनों प्राइवेट रनवे पर पहुँच चुके थे, जहाँ से उनका जेट जैसलमेर के लिए रवाना हुआ। रात के लगभग 11 बजे तक वो कृषा के साथ जैसलमेर पहुँच चुका था। कृषा और युग ने बहस होने के बाद से पूरे रास्ते कोई बात नहीं की थी। कृषा प्राइवेट रूम में सो रही थी, जबकि युग मलिक के साथ बैठा था। जैसलमेर पहुंचते ही युग, कृषा और मलिक तीनों गाड़ी में बैठकर किसी खास जगह जाने के लिए निकल गए। लगभग 2 घंटे का सफर तय करने के बाद वो लोग जैसलमेर के डेजर्टेड इलाके में बने एक पुराने किले में पहुंचे। उसके किले की हालत काफी खस्ता हो चुकी थी और उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी पल ये ढह जाएगा। किले को देखने के बाद कृषा ने धीरे से बड़बड़ाकर कहा, ये क्या बकवास है, यहाँ पर कोई कीमती असेट क्यों छुपाएगा? ऊपर से इस खंडहर बन चुकी जगह पर पहला पड़ाव कभी नहीं हो सकता। युग कृषा के बिल्कुल पास खड़ा हुआ था। उसने कृषा की तरफ देखकर कहा, अगर अपनी पोजीशन किसी और को नहीं दी होती तो आज तुम्हें हर एक बात का पता होता। मुझे सब पता है और ये कोई पहला पड़ाव नहीं है, यहाँ तो कोई सिक्योरिटी भी नहीं है। आसपास तो क्या, दूर दूर तक कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा, कृषा चिढ़ते हुए बोली। युग ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और कृषा का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाने लगा। मलिक उनके पीछे पीछे आ रहा था। कृषा ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, देखो तुम खतरों से खेलते होगे, लेकिन मुझे इस तरह के खतरों से खेलने की आदत नहीं है। मैं इस जगह बिल्कुल नहीं जाऊंगी, क्या पता कब ये किला गिर जाए, मुझे इसके नीचे दबकर नहीं मरना है। अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप चलती रहो, युग ने सख्त आवाज में कहा। किला काफी बड़ा था, भले ही वो खंडहर बन चुका हो, लेकिन बचा हुआ साफ हिस्सा इस बात का गवाह था कि कई दशकों पहले वहाँ का वैभव देखने लायक होगा। किले में जाने के बाद वो लोग वहाँ के तहखाना में पहुँचे। वो एक अंडरग्राउंड जगह थी। जैसे ही वो वहाँ गए, युग दरवाजे के पास खड़ा हो गया। कृषा हैरानी से उसके तरफ देख रही थी कि युग रुक क्यों गया है। जब इतनी दूर आ ही गए हो तो आगे जाने में क्या प्रॉब्लम है? कृषा ने सिर हिलाकर कहा और आगे जाने लगी। तभी युग ने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींचा। कृषा गुस्से में युग की तरफ देख रही थी। तभी युग ने अपना वॉच खोला और दरवाजे के उस पार उसे फेंक दिया। अगले ही पल वो वॉच जलकर नीचे गिर चुका था, क्योंकि वहाँ इनविजिबल सिक्योरिटी सिस्टम सेट किया हुआ था। उस नज़ारे को देखकर कृषा कांप गई और उसने डर के मारे युग का हाथ कसकर पकड़ लिया। अब उसे सच में यकीन हो गया था कि हाँ, यही पहला पड़ाव है और इसकी सिक्योरिटी के लिए लोगों की ज़रूरत नहीं। यहाँ का एडवांस्ड सिक्योरिटी सिस्टम ही इस जगह की रखवाली के लिए काफ़ी था।